Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
अर्जुन ने अपना इच्छा व्यक्त किया कि हे भगवान,
मुझे आप चतुर्भुज रूप दिखाइए, जो शंख, चक्र, गदा और पद्मा धारण किए रूप को दिखाइए। तो इसके बाद 47 श्लोक से भगवान और कहना शुरू करते हैं। जैसे अर्जुन ने इच्छा प्रकट किया, तुरंत उन्होंने दिखाई नहीं, उन्होंने क्या किया थोड़ा सा, अरे अर्जुन, मैंने तो तुमको ऐसा रूप दिखाया, इतना अद्भुत सा रूप दिखाया, आज तक किसने नहीं देखा। यानी विश्वरूप का गुणगान स्वयं भगवान अर्जुन को कहते हैं। 47
त्वाभिनेदं रूपं वरं नष्टं मयोगा तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तवान्येन दृश्यते पूर्वम्।
अनुवाद।
भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने पर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजो में आदि रूप को कभी नहीं देखा।
हाँ, ये श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी उस बात को लिखते हैं जो हमने सुबह चर्चा किया था आखिरी में, कि कोई कह सकता है कि जब शांति दूत बन के भगवान गए थे, वो भाग पढ़िएगा, नहीं तो पूरा ही पढ़िएगा।
अर्जुन भगवान के विष्णु को देखना चाहता था, अतः भगवान अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजो में तथा ऐश्वर्य में विष्णु का दर्शन कराया। ये रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने ये रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। ये रूप कृष्ण की उस उपगंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने नहीं किया, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो सब लोग तथा अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया था गया। दुर्भाग्य में दुर्योधन ने शांत प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे। इस वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। ये स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी
नहीं देखा। भिन्नता इसलिए भिन्नता क्योंकि वो केवल अंश मात्र था, इसलिए भिन्नता। ये बात स्पष्ट में प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं। हाँ, अभी ये श्लोकों के पीछे भाव ये है कि एक प्रकार अर्जुन को थोड़ा सा ये कह रहे, अर्जुन अभी बोलते हो चतुर्भुज रूप दिखाओ, मैंने ये विश्व रूप इतना प्रयास से दिखाया तुमको क्योंकि तुमने इच्छा किया था एक तो, और इच्छा करने के बाद मैं तुमको दिव्य दृष्टि दिया, उसके बाद तुमको ऐसा रूप दिखाया आज तक किसी ने देखा, इतना अद्भुत सा रूप है, इतने सारे लोगों ने उनका गुणगान किया, तुम भी गुणगान किया, अभी तुम क्यों बोलते इसको नहीं देखना है। थोड़ा सा अर्जुन को ये जो उत्कंठता है अर्जुन के अंदर, चतुर्भुज और अंत में द्विभुज देखने की उत्कंठता है, उसको बढ़ा रहे हैं। 48 श्लोक
विज्ञा जय नविने न चांति जाभेदेवसो लोके दृष्टं तवान्येन कुरु प्रवीरा।
हे पुरुषेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता। इस प्रसंग में
हाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वेदों के द्वारा अन्य दान यज्ञ क्रियाओं के द्वारा भी इन भगवान के रूपों को नहीं समझ सकते, सारूप नहीं, तात्पर्य जरूरत नहीं, ये तो आप जानते ही उनके नाट द फॉर्म्स ऑफ कृष्ण विदाउट इज मर्सी 49
मेरे घनाना गुण को देखकर अत्यंत विस्तृत एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो।
हाँ, इसका तात्पर्य महत्वपूर्ण है, तात्पर्य पड़ी गया।
भगवदगीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु गुरुओं के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र ने पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य व्योग होने के कारण उनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन ये दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कर्तव्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जगन कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप वध करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, तथा उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे देवानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दुर्भ्या वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है जिससे वो भगवान के साथ देवा भक्त का आदान प्रदान कर सके।
तो ये श्लोक में और एक कारण, भगवान ने अर्जुन का विश्व रूप इसलिए दिखाया क्योंकि अर्जुन कहता था कि मैं भीष्म द्रोण इनको मैं मार नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे संबंधी है, मेरे गुरुजन हैं। तो ये विश्वरूप भगवान अर्जुन को दिखाने के पीछे और एक रहस्य है कि अर्जुन को दिखाना चाहते हैं, हे अर्जुन, जिन लोगों को तुम मारना नहीं चाहते थे वो पहले से मेरे द्वारा मारे गए हैं, तो ये चिंता मत करो, तुम शांत हो जाओ, शांति से तुम युद्ध करो, उनको मरे हुए लोगों को तुम मारो। ये एक इस श्लोक का और एक कारण, भगवान ने विश्वरूप को अर्जुन को क्यों दिखाया। और ये भी कहते हैं कि अभी मेरा तुम चतुर्भुज रूप को अभी दर्शन करो, अभी ये रूप को मैं अभी समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि भक्तों की मन में शांति लाना ये भगवान का स्वभाव होता है। कि अर्जुन एकदम पूरा विचलित हो गया था, वह शांत नहीं था उनका मन, इसलिए उनका मन को शांतता प्रदान करने के लिए भगवान ने अर्जुन को चित्रूप दिखाया, बाद में द्विभुज रूप दिखाया। और इस श्लोक में और एक महत्वपूर्ण चीज है कि भक्त लोग ये विश्व रूप को इसलिए देखना नहीं चाहते हैं या उससे उतना ज्यादा आसक्त नहीं है क्योंकि ये विश्व रूप के साथ कोई आदान प्रदान नहीं हो सकता है, कोई उनके साथ पूजा या हो या इस प्रकार उनके साथ संबंध जोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए जहां सेवा नहीं है उधर भगवान के भक्त किसी उस स्थान को स्वीकार नहीं करते। जैसे भक्ति रसामृत के पहले में कहा गया है कि भागवत का एक श्लोक कोट करते हुए, भले ही पांच प्रकार का मुक्ति है, भक्त लोग ये मुक्ति को भी नहीं चाहते। दीयमानम न गृणंती, क्यों? विना मत सेवनम, क्योंकि भगवान की प्रति सेवा की भावना आदान प्रदान नहीं होने की वजह से दीयमानम न गृणंती, मुक्ति प्रदान करने के बाद भी ऐसी मुक्ति को चाहते नहीं। तो इस प्रकार के दर्शन की क्या कहना, वैसा भगवान का रूप का साथ क्या दर्शन की क्या क्यों करना चाहता है जिसके अंदर कोई सेवा का भावना ना हो। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसके अंदर। नेक्स्ट
तुक्तम सकम रूपम दर्शयामास भूय अवशयमास नीवम भूत्वा पुनः संयुन्वपुर्महात्म्यम्।
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी अपना असली शत्रु चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को भैर बनाया।
कृष्ण ने सबसे पहला क्या किया, अपना अर्जुन को इस प्रकार कहते हुए अर्जुन को चित्रभुज रूप दिखाया। ये चित्रभुज रूप कौन सा रूप था? देवकी नंदन रूप था। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, व्हेन कृष्णा अपियर्ड एज सन ऑफ वसुदेव एंड देवकी, ही फर्स्ट ऑफ ऑल अपियर्ड एज 400 नारायण, बट when he was requested by his parents, he transformed himself into an ordinary child in appearance. Similarly, you see prakar, Krishna knew Arjuna was not interested in seeing the four-handed form, but since Arjuna asked to see the four-handed form, Krishna also showed him the four-handed form again, and then showed himself to the two-handed form. The word Saumya Vapu is very significant. Saumya Vapu is very beautiful form. It is known as the most beautiful form. When he was present, everyone was attracted simply by Krishna's form. Because Krishna is the director of all the universes, he just banished the fear of Arjuna. He is devotee and showed him again his beautiful form of Krishna. In the Brahma Samhita it is stated, Premanjana Charita Bhakti Rochanena. Only person who has eyes are smeared with the ointment of love can see the beautiful form of Krishna. तो ये श्लोक में मुख्यतः संजय कहते हैं अर्जुन के मन को शांत करने के लिए भगवान ने विश्वरूप दर्शन को समाप्त करके चतुर्रूप दिखाया। तो चतुर्रूप दिखाने के बाद भगवान को अर्जुन बिना कहे कृष्ण को ये मालूम था कि ये चतुर्भुज रूप से भी कृष्ण प्रसन्न अर्जुन प्रसन्न नहीं होगा। तो बिना पूछे भगवान ने द्विभुज रूप को दिखाया, जिसके द्वारा अर्जुन शांत हो गए। ये द्विभुज रूप को सौम्य रूप कहा गया है। सौम्य मतलब अति सुंदर, अति अद्भुत रूप। नेक्स्ट अर्जुन वाच,
अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदरी मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है।
तात्पर्य
यहाँ पर प्रयुक्त मानुष्य रूप शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान भूलता दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अमृत बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विष्णु और फिर चतुर्भुज नारायण को दिखा पाना कैसे संभव होता? अतः भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वो सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्वरूप को तथा चतुर्भुज विश्वरूप को प्रदर्शित किया तो फिर वे किस तरह सामान्य लोग हो सकते हैं? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली दीपाओं से विकृत नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवदगीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है, मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने का कोई आवश्यकता नहीं।
दस तो अर्जुन ने जिस प्रकार ये मानुष रूप देखा तो तुरंत उनका माइंड मन जो है शांत हो गया और सचेता प्रकृतिम गता। सचेता स्वयं पहले उनका जो स्थिति था मानसिक स्थिति उस हिसाब से पहुंच गए। भाग में
52 श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम इस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत रूप को देखने की ताक में रहते
हैं। ये अभी जो विश्वरूप का भगवान ने दर्शन लाया उससे भी दुष्कर है। ये इस बात को इस बात को वर्णन करते हुए तात्पर्य परकोट है, द एसेंस ऑफ दिस वर्ड्स।
इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। वो सुदर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।
कैसे पता लगता है कि और दुर्लभ है और मुश्किल है और असामान्य नहीं है? ये शब्द के द्वारा सुदूरदर्शनम।
जो सूचित करता है कि कृष्ण का विविज रूप और अधिक भू है।
दुर्दर्शनम ही नहीं है, सुदुदर्शनम। हाँ दर्शन।
कोई तपस्या वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विष्णु का दर्शन संभव कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना ये संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है, फिर भी विष्णु रूप इससे आगे कृष्ण का द्विज रूप है, इससे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्थितियां की। यद्य उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूल देख उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका वास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार पुरुष का सम्मान करे, किंतु तो यह सब मुद्दापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवदगीता 9:11 में इसकी पुष्टि हुई है, अवजानंती माँ बूढ़ा मानुषि कर्माश्रुतम। जो लोग उनका उपवास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्मसंहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवदगीता में पुष्ट हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग भगवदगीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का उपयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, तो बता वे परम सत्य को जो विशेष मानते हैं तथा वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है, जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वो उनसे साथ उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है, उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवदगीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य वृद्धि वर्णन है और कृष्ण के विषय में प्रमाणिक व्यक्तियों के उसे श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सत्यमित वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारम्बार श्रवण करने से कृष्ण में प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित है, उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, उन्हें वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी कुछ वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वो तो परम सत्य को सत्य समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावना से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वो कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकृतिक देवताओं के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विज रूप से के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्य कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। द्विज रूप के अलावा ये श्याम सुंदर रूप को समझ पाना और कठिन होता है।
भगवान ये जो कृष्ण तीन जगह निवास करते हैं, वृंदावन मथुरा द्वारका। मथुरा और द्वारका में कृष्ण कभी चतुर्भुज धारण करते हैं कभी द्विभुज धारण करते हैं और जिनको वासुदेव कृष्ण कहा जाता है वासुदेव कृष्ण। वृंदावन में कृष्ण के लिए हमेशा चतुर्भुज है, ऑलवेज
चतुर्भुज
सॉरी द्विभुज है वृंदावन में। कभी एक बार उन्होंने चतुर्भुज धारण किया था वृंदावन में, आपको मालूम? हाँ, रासलीला में। तो सब गोपियों ने पूछा कि कहां है नारायण जी, बताइए हमारे कृष्ण। जब राधारानी आई तो तुरंत उनके दो हाथ नहीं रह गए, वो ड्रामा नहीं कर पाए। जैसे मथुरा में भगवान ने चतुर्भुज दिखाया था देवकी और वसुदेव के सामने, उसके बाद तुरंत द्विभुज रूप धारण किया। द्वारका में जब रुक्मिणी जी बेहोश हो गए उस समय भगवान ने चतुर्भुज दिखाया था और दो हाथों से रुक्मिणी को उठाया और दो भुजाओं से रुक्मिणी का जो घूंघट ऊपर रखा। तो ये दो इंस्टेंसेस है भगवान ने द्वारका और मथुरा में, कभी द्विभुज वाले हैं कभी चित्रभुज वाले। अर्जुन कौन से कृष्ण का दर्शन कर रहे
हैं?
किसके? वृंदावन के वासुदेव कृष्ण, द्विभुज वाले वासुदेव कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को लिखते हैं कि he wants to see the two-handed Krishna form so that he can reciprocate loving service with the Supreme Personality of Godhead. The original verses of Bhagavad Gita are very clear. कहाँ गया? 52, sorry. The conclusion is that although to see the universal form of Krishna is very very difficult and not possible for everyone and anyone, it is still more difficult to understand his personal form of Shyam Sundar. ये श्याम सुंदर कृष्ण को समझना और मुश्किल है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अर्जुन भगवान के श्याम सुंदर रूप का दर्शन नहीं कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में भगवान कौन सा रूप है उनका? वासुदेव कृष्ण का ही रूप है, लेकिन द्विभुज वाले वासुदेव हैं। ये द्विभुज वाले वासुदेव हैं और अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप दर्शन करने के बाद उन्होंने नारायण का रूप दिखाया था, चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाया था, जो चतुर्भुज वासुदेव कृष्ण से अलग है। इसके लिए थोड़ा सा भगवान के रूपों के बारे में थोड़ा जानकारी आपको प्राप्त करना होगा। कहां से? चैतन्य चरितामृत से। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की चर्चा में, आपके पास चैतन्य शिक्षामृत टीचिंग से लॉर्ड चैतन्य बुक होगा, उसके अंदर तीस चौथा पांचवा अध्याय लगता है, द अवतार्स करके एक चैप्टर है, दूसरा है हिज फॉर्म्स आर वन एंड द सेम, उनके रूप एक ही है करके ऐसा वर्णन। उधर भगवान के तीन प्रकार के रूपों का वर्णन है, स्वयं रूपा, तदेकात्म रूपा, आवेश रूपा। ये स्वयं रूप के अंतर्गत दो विभाग है, एक है स्वयं रूपा और स्वयं प्रकाश। हाँ चार्ट है मेरे पास, लेकिन लाए नहीं, बंबई में पड़ा है। ठीक है, चार्ट बना सकते हैं आपके पास? 24 है चार्ट है। आवेश रूपा पहला है स्वयं रूपा। स्वयं रूप के अंतर्गत दो कैटेगरी है, स्वयं रूपा और स्वयं प्रकाश। स्वयं रूपा कृष्ण के विस्तार, लेकिन एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं, वो उन्होंने रासलीला में किया था। और स्वयं प्रकाश बलराम, जिनके अंदर रूपों का अंतर, रंग का अंतर रहता है। ठीक है,
रूप रंग का अंतर रहता
है। हाँ, उसके बाद तदेक आत्मरूपा।
तदेक
आत्मरूपा, तदेकात्मरूप। ये तदेकात्मरूप के अंतर्गत विभव प्रभव, विभव प्रकाश प्रभव प्रकाश, प्रभव विभव प्रकाश के अंतर्गत भगवान के जो विस्तार है कहां, द्वारका में, हाँ ये विस्तार,
तो ये तो स्वयं रूप वाला हो गया, स्वयं रूप वाला
है ना, ये द्वारका के हैं, ये जो है ना रास इलाके हैं, हाँ जहां भगवान ने वैभव प्रकाशित किया उधर
द्वारका विस्तार,
हाँ विस्तार
प्रकाश
सारे अवतार,
हाँ
सारे जितने भी अवतार हैं उनके छह प्रकार के अवतार हैं भगवान के, लीला अवतार, गुणावतार, तदेकात्म रूप के अंतर्गत आते हैं, ऑल कम्स इन तदेकात्म रूप,
हाँ
ये छह अवतार अंतर यह है कि रासलीला में भगवान श्याम सुंदर माधुर्य स्वरूप था, द्वारका में उनका कौन सा स्वरूप है, ऐश्वर्य स्वरूप है, वो दोनों कृष्ण में अंतर है, वो कौन है, द्वारका के कृष्ण हैं, वो द्वारका के कृष्ण हैं जिनको वासुदेव कृष्ण के रूप में माना जाता है, ठीक है, हाँ तो भगवान ने अर्जुन को पहले छह प्रकार के अवतार है ना, लीला अवतार, गुणावतार, हाँ पुरुषावतार, युगावतार, उसका पूरा चार्ट है लेकिन वो मेरे पास सभी अभी नहीं है, हाँ मैं हो सकता है तो आपको मैं मेल में मंगा के और फॉर्म देता हूँ, आई ट्राई टू गिव दैट फॉर्म टू यू, ठीक है, आप एक काम कीजिएगा उसको ऐसे फोल्ड करके रखिए, फोन सो सकता है तो मैं बॉम्बे से मंगा लेता हूँ, मेरे कंप्यूटर में है, उसको मेल में मंगाऊंगा और उसको आपको एक प्रिंट आउट लेके जेरोक्स कर देता, ठीक है, फोन करके बता दूंगा, वो पूरा चार्ट बनाया हुआ है उसका पूरा, हाँ इसका पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है मेरे पास, एक कोर्स है टीचिंग्स लॉर्ड चेतना के कोर्स के अंतर्गत पूरा फॉर्म्स का वर्णन है पूरा, वैसे बताने से नहीं होगा, चार्ट होगा तो क्लियर होगा, हाँ लघु भागवत अमृत में है, अच्छा डिटेल्स में, एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है पंचरात्र का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है पंचरात्र, पूरा लक्षण भी है, ये लक्षणों का वर्णन करने वाला श्लोक भी है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन ये जो चीज है ना इधर प्रभुपाद जी जितने लिया वेरी वेरी सिंपल करके दिए है, फिर वो श्लोकों का लक्षणों को वो सब देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो ये स्पेशल सब्जेक्ट है टोटली, हाँ आवेश दो प्रकार का है, एक गौण है एक एक सेकेंडरी, हाँ तीसरा वाला आवेश, उसको चार्ट में दे दूंगा जाने से पहले आपको तो मिल जाएगा चार्ट, मिल गया तो चार्ट, कल्प सूत्र छह वेदांग है ना, छह वेदांगों में शिक्षा व्याकरण निरुक्ति छंद कल्प ज्योतिष, ये कल्प सूत्र है कल्प शास्त्र है, छह वेदांग होते हैं, There are six Vedangas. Char Ved. Che Vedang. ये वेदों का जो ट्री है वो अलग चार्ट है उसका, वो चार्ट कभी और बताएंगे आपको, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. है बस है वेदास के चार्ट है. ठीक है, कहां से लिया इन्होंने दिया. हाँ ठीक है, तो उसके अंदर जो सिक्स वेदांगस, उनमें से एक है कल्पशास्त्रस. ठीक है, हाँ ये हर एक शिक्षा का कहीं प्रणाली आता है, उधर सूत्र के हिसाब से ही आता है. जैसे व्याकरण है, सूत्र होते व्याकरण का, शिक्षा का भी सूत्र है, वैसे हर चीज का. एग्जैक्टली लाइन पढ़ी है पूरा. हाँ नहीं नहीं, कल्प सूत्र मतलब वेदांगों में आता है. कल्प इज वन ऑफ द वेदांगस, पक्का वही है. क्योंकि कोई भी वैदिक क्रिया तभी किया जाता है तब आपको पूरा वेदांग में निपुणता हो. वेदांगों में लास्ट चीज है ज्योतिष और कल्प, उसके बाद वैदिक मंत्रों को सीखा. जैसे आप मिथिला की ओर जाएंगे, उनका वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने की विधि अलग है, वैदिक करण वही चीज. आप दक्षिण में जाएंगे, विधि है सेम है. उनका जो सूत्र है, जैसे व्याकरण भी है, वो कोई पाणी है, कोई अलग है, कोई अपना तो ये है उनका, कौन सा है रूप गोसाई पाद का हरिनामामृत व्याकरण है, बस इज डिफरेंस इज देयर. ठीक है, नेक्स्ट प्रमुख प्रमुख अनंत शेष प्रमुख में आते हैं, अनंत शेष. और गौण में नारद, व्यास, कुमार, ये सब आते हैं. ये श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो रूप मैं तुम दर्शन कर रहे हो अर्जुन, ये रूप को दर्शन करना ये यज्ञ की विधि के द्वारा हो, वैदिक विधि के द्वारा हो, दान अन्य तपस्या की क्रियाओं के द्वारा ये समझ नहीं सकते हो. तब अगले श्लोक में कैसे समझ सकते हैं उसका वर्णन है, हाउ टू अंडरस्टैंड. भक्त्या तु मुन्या सह अहमेवं विदोस्वर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परान्तप।
हे अर्जुन, केवल अनंत भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो।
प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत लंबा तात्पर्य देते हैं, लॉन्ग परपोट। ये आपने पहले बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, उसी पॉइंट्स को, सेम थिंग। भक्तिया तो अन्या अहम एवं दोष होती ना, भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मुझे इस प्रकार जानने का। तो ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ के रख दीजिए, क्योंकि आपको ये सब मालूम है। यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। नेक्स्ट अलग अलग जगह गणना अलग अलग प्रकार होता है, कैटेगराइजेशन जो है ना अलग अलग प्रकार होता है। जैसे पुराण 18 है, कभी कभी 18 को जोड़ के कुछ और हो सकता है, 18 पुराणों को एक ही प्रकार जोड़ के एक ही पुराण लिख सकते हैं। तो कैटेगराइजेशन अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार हुआ। जैसे 24 तत्व है, कभी 16 वर्णन करते हैं, कभी 24 होता है। तो कैटेगराइजेशन अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन है उतना शास्त्र। तो पूरा वैदिक स्क्रिप्चर्स का ट्री जानना चाहिए। ओरिजिनली एक वेद था, वो चार वेद हुए, और स्मृति श्रुति और न्याय प्रस्थान, ये तीनों में अंतर क्या है, स्मृति शास्त्र के अंतर्गत क्या आता है, न्याय शास्त्र में क्या आता है, वो सब चीजें थोड़ा बहुत जानना चाहिए। वो तो बताए ना आपको, चार्ट है ना दिया ना, बताया ना चार्ट में दिया, बोला ना चार्ट। हाँ कभी नहीं है उसके बारे में कोई इतना, वही चार्ट है जो अपने मैं मेरे रोड में देता था, वही है दूसरा है। वीएच वाला चार्ट क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मेरा रोड में मैंने दिया था वही चार्ट है, दूसरा है वो नहीं है ना, दूसरा है वो चार्ट। ठीक है, वो थोड़ा लॉबरेट सब्जेक्ट मैटर है, चाहे तो मैं बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, संक्षिप्त में आई कैन टॉक अबाउट। चैप्टर खत्म करके बाद में कभी वो करेंगे। नेक्स्ट लास्ट, भक्ति मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवोशन। भक्ति आदर है क्या है भक्ति, उसका वर्णन करते 55th श्लोक में। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर्य सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव।
हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कर्म से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है।
इसमें पांच चीजों का वर्णन है, पांच भक्ति अंगों का। एक है मत कर्म कृण, भगवान के लिए खूब मेहनत करना। दूसरा मत परमो, मत परह, मत परमो, वो भी कैसे कार्य करना, भगवान के प्रति आसक्ति बना के, कृष्ण से आसक्ति से कार्य करना। संग वर्जितः, मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैर्यः, ये पांच चीजें हैं, फाइव थिंग्स। निर्वैर्य सर्वभूतेषु, एक लाइन है, एक शब्द, सर्वभूतेषु निर्वैर्यः मतलब किसी के साथ कोई संबंध। लास्ट पैराग्राफ पढ़िए,
एक बात पढ़िए। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने छह गंगों विष्णु के साथ साथ काल रूप को जो सब कुछ भक्षण करने वाला है और यहां तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है, ऐसा नहीं है कि वे आदि विष्णु या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, वे समस्त रूपों के उद्गम है। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल ध्रुवजी श्याम सुंदर को। धर्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्तिभाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि ग्यारहवें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है।
ग्यारहवें अध्याय का तात्पर्य यह है, कृष्ण जो मूल रूप है, द्विभुज वाले रूप है, वो सारे रूप में सर्वश्रेष्ठ है और सार है। उसके अंदर विश्व रूप है, विश्व तत्व है, सारे अवतार सब कुछ उनके अंदर है। परावरेशो महदंश युक्तो, जब भगवान प्रकट होते हैं सारे जितने भी अवतार है वो सब उनके शरीर में निवास करते हुए वो प्रकट होते हैं। जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि विष्णु ने तो अवतार लिया है, विष्णु अवतार लेते राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, कभी विष्णु आते हैं नरसिंह के रूप में, ऐसे ऐसे कहते हैं, हमने ऐसा सुना है, उसका क्या जवाब देंगे आप? व्हाट इज द आंसर यू गिव? सबसे पहला है कि क्या बोलोगे आप? जो बोल रहे हो गलत है, तो आप बोल, पहले चीज उनको बोलना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो सही है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में भी इस बात को कहा गया है कि वो सही है लेकिन पूर्ण तरीके से सही नहीं है, क्योंकि क्षुरदाक्ष विष्णु के द्वारा ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। तो इसीलिए जब भौतिक जगत की दृष्टिकोण से देखा जाए ऐसा लगता है क्षुरदाक्ष विष्णु आ रहे और वापस जा रहे, वो राम के रूप में आ रहे वापस जा रहे, वही नरसिंह के रूप में जा रहे वापस जा रहे, लेकिन अस्तित्व में एक क्षुरदाक्ष विष्णु के पीछे पूरा एक आध्यात्मिक जगत है जिसके अंदर अनेकों धाम है और अनेकों अवतार नित्य रूप में अंदर निवास कर रहे हैं। वो बात लोगों को नहीं मालूम। आध्यात्मिक जगत के दृष्टिकोण से देखा जाए तब मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं, जब कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर समित होके ऑल था। क्षुरदाक्ष विष्णु जो है वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, ये दोनों के बीच में कनेक्शन है। परमात्मा क्षुरदाक्ष विष्णु ही परमात्मा है। सारे जितने भी अवतार है सारे अवतार उनके शरीर में समाहित होके आते हैं। हाँ हाँ, तब क्षुरदाक्ष विष्णु उनके शरीर में प्रवेश कर देते हैं। हाँ, उनके शरीर में प्रवेश करके आते हैं। वो सब उनके अंदर प्रवेश करके ही आते हैं, जैसे इतना हद तक कि श्री विश्वनाथ शेखर ठाकुर इसको बहुत विस्तृत रूप में लिखते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि वसुदेव को आप लेके जाओ गोकुल, और उधर यशोदा माई को एक बच्ची हुई रही, बच्ची को वापस लेके जाओ। नो कहना है कि ये वसुदेव कृष्ण को जब लेके गए, वसुदेव वसुदेव लेके जा रहे थे वसुदेव कृष्ण को, तो उधर यशोदा माई के गर्भ से भी कृष्ण का प्रकट हुआ था और उनके शरीर में ये कृष्ण जो है समा गए, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। नहीं, नारायण नहीं है, कृष्ण ये आचार्य का मत है, विश्वनाथ ठाकुर का मत है। और एक आचार्य का मत यह है कि वसुदेव जब यमुना पार कर रहे थे तो क्या हुआ कि वो कृष्ण उनके हाथ से छूट गए, वो बहुत एकदम घबराते हुए कैसे भी करके उनको पानी में उनको कृष्ण प्राप्त हुए। तो वो टाइम में क्या हुआ ये एक आचार्य कहना है। तो कभी आचार्यों का अलग अलग प्रकार के वर्णन जो है
उसको ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि ये उन आचार्य को जिस प्रकार कृष्ण ने प्रकाशित किया उन लीला को, उस प्रकार वो अपने भाव को उन्होंने टीका में व्यक्त किया।
हमारे आचार तो अलग अलग टीका कर रहे हैं,
कभी कभी वो दोनों के बीच में विरोधाभास होने पर भी ये समझना चाहिए दोनों सही है।
ठीक है, दोनों सही है। आज जो हमको समझ रहे हैं और आचार लोगों में कंफ्लिक्ट है इस तरीके से,
वो कंफ्लिक्ट नहीं है, वो कंफ्लिक्ट दिखाई पड़ता है, इसलिए कंफ्लिक्ट दिखाई पड़ता है, कंफ्लिक्ट है नहीं। उसका एक्सप्लेनेशन जो है आपको जो भागवत में अन्य प्रकार अन्य शास्त्र में जो विद्वान है उनके मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में जब एकदम ट्रेडिशनली जब सिखाया जाता है वेदों को या वेदांत को सिखाया जाता है, सबसे पहला उनको एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है, दे आर ट्रेन्ड इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के नाम है समन्वयाधिकरण, समन्वयाधिकरण। समन्वयाधिकरण मतलब दो विरोधात्मक बातों के अंदर समन्वय को देखना। लगता है दोनों विरोधास्तों के, लेकिन है नहीं। इसके अंदर जब तक ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है तब तक उनको वेदांत का शिक्षा नहीं दिया जाता है, नहीं तो क्या करेगा वो व्यक्ति, उत्पात बचाएगा, अपराध कर बैठेगा। जैसे उसी व्यक्ति को मैनेजर बनाया जाता है जो दो भक्तों के अंदर केवल सही चीज को लेकर दोनों के अंदर झगड़ा भी होता हो तो दोनों को समन्वय करता है, नहीं वो भी सही है तुम भी सही है, वो अपना तुम अपना काम करो या अपना काम करो जाओ, इसको योग्य मैनेजर बोला जाता है। तो वैसे ही एक योग्य दार्शनिक वो है जो दो परस्पर विरोधास्पद बातें दिखाई पड़ता हो लेकिन अस्तित्व में उनके अंदर समन्वय को देखने में उनके अंदर एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो प्रोसीड है, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स विदांत। कल्प वेद के अनुसार है और रिवलेशन बहुत सारे जो टीकाएं जो है रिवलेशन, जैसे जय देव गोस्वामी है इतना तक क्या, जैसे भागवतम में दामोदर लीला का वर्णन है, ऐसा वर्णन है भगवान एक ही हाथ से अपनी आंखों को किया। अभी आप करांबो या युग्मे न युग्मम रजंतम, दैट इज हाउ सत्यव्रत मुनि को भगवान ने ऐसा रिवेल किया, उन्होंने अपना ऐसा लिखा। तो ये हमेशा हर चीज इतिहास नहीं है, रिवेलेशन। जैसे कृष्ण कर्णामृत है, भगवान साक्षात दर्शन दे रहे थे उनको, देखते देखते उन्होंने लिखा, तो उस पर कोई क्या, भगवान एक ही लीला को हर बार एक ही जैसे थोड़ी ना करते, वो मशीन थोड़ी ना है, ही डज इट सम वैरायटी, वैरायटी को समझना चाहते हो। ठीक है, ठीक है। 11वां अध्याय थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि ऐसे तो लिखा हुआ है ना पहले आपने बोला वैसा किया मैंने, कल पूछा तो आपने कहा 11 से डेढ़ और ढाई से चार, आपने बोला वैसे किया।